ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की जय। तो आज बहुत ही बड़ा उत्सव है। मुझे बताया कि 7 तिथियां आज साथ में है कि वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, फिर श्रील विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर का तिरोभाव है। अगर मैं अंग्रेजी में प्रवचन करूँगा तो कोई दिक्कत है? क्योंकि ज़्यादातर हाँ बहुत दिक्कत है। ठीक है ठीक है, तो कोई अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेट करके बताए अगर इनकी इच्छा है तो। हरे कृष्णा। पीछे के तरफ तो श्री सरस्वती पूजा, श्री वसंत पंचमी, श्रील विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर तिरोभाव महोत्सव, फिर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव महोत्सव, फिर श्रील रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव महोत्सव, श्रील पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी आविर्भाव महोत्सव। तो थोड़ा सा वसंत पंचमी के बारे में हम जानेंगे कि श्री वसंत पंचमी क्या है। तो वैसे तो कहते हैं कि आज के दिन से हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी ठंड कम होना चालू हो जाती है। थोड़ा सा हम सबके लिए आशा है, सब लोग स्वेटर पहन के बैठे हैं। आज से थोड़ा थोड़ा ठंड कम होना चालू हो जाता है। जो पतझड़ होती है उसके बाद का जो ऋतु होता है उसमें नए अंकुर पेड़ के ऊपर नए पत्ते नए अंकुर उमलने चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा शुभ अवसर माना जाता है। तो वृंदावन में आप देखेंगे तो भगवान को अलग अलग प्रकार के फूल और पत्तों से सजाया जाता है आज के दिन। हमारे भी वृंदावन विहारी का आपने दर्शन किया रहेगा। ज़्यादा करके पीले कलर के वसंती कलर मतलब रंग, मतलब पीले पीले रंग का सब पोशाक भगवान को पहनाया जाता है। पीले कलर के रंग के विविध व्यंजन भी भगवान को खिलाए जाते हैं। कौन से हैं ज्यादा करके पीले कलर के व्यंजन? लड्डू है, जलेबी है, आज ही उसका आस्वादन हो चुका है। और क्या क्या होता है पीले कलर का? खासकर केसरी शीरा होता है, केसरी शीरा बनाते हैं भगवान के लिए। फिर केसरी राजभोग बनाते हैं। अब बोलेंगे अरे किसी में हल्दी डाल दो, हो गया पीला हो गया हमारे। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के ढोकला खिलाते हैं, वो खमन ढोकला खिलाते हैं बराबर। और वो क्या कहते हैं उसको, गुजरात में एक बनता है, नहीं, ठीक है, खांडवी बोलते हैं उसको, खांडवी, हाँ, पीले कलर की। तो ऐसा सब पकवान को अलग अलग खिलाया जाता है, ज़्यादा करके जिसमें, हाँ, हम पीला रंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भी रंग क्या है, सुवर्ण कहते हैं, लेकिन दिखाते समय चंपक का फूल दिखाते हैं, वो कैसे रहता है, पीले रंग का रहता है। तो ये वसंत पंचमी का महत्व है कि भगवान को अलग अलग प्रकार के, ज़्यादा करके पीले, आज का दिन पीला रंग पहनाते हैं, और हरियाली तीज जब आता है मानसून के बाद, तो उसमें क्या भगवान को हरा रंग पहनाते हैं, पूरा हरा हरा भगवान को करा देते हैं। तो ये है वसंत पंचमी का महत्व। तो आज के दिन जो नए नए जो धान है, जमीन है, उसके ऊपर, सबके ऊपर संस्कार किए जाते हैं, जो जो फल उत्पादन करने वाला वृक्ष है, सब सभी के ऊपर संस्कार किए जाते हैं। और आज देखते हैं कि जैसे, हाँ, बच्चों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण, छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, तो हमारे बुद्धि को भी, हाँ, नई नई अंकुर उमल के आए, उसको भी नए फूल फल आ जाए, इसलिए श्री सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। तो हम देखते हैं कि सरस्वती देवी का जो मूल रूप है वो आध्यात्मिक जगत में है, और उनको वाणी देवी कहते हैं, सरस्वती, वो जो आध्यात्मिक सरस्वती है, और उनके पति कौन है, साक्षात भगवान कृष्ण है। आप जगन्नाथ अष्टम में सुने रहेंगे, रामा वाणी रामा सुरदमल पंके रुह मुखा, मतलब जगन्नाथ स्वामी कौन है, रामा वाणी रामा, राम का एक अर्थ होता है पति भी, तो किनके पति हैं, रमा लक्ष्मी देवी के पति हैं, और वाणी सरस्वती देवी के भी पति हैं। तो इसलिए सरस्वती की पूजा, सरस्वती देवी को हम समझते हैं कि वो हमें आध्यात्मिक जो सरस्वती है, उसकी कृपा से हमको, जो राधा रानी का ही क्या है, विस्तारित रूप है, जो हमको अच्छी अकल अगर देती है, तो हम आध्यात्मिक मार्ग पे सरलता से चल सकते हैं। तो यह सरस्वती पूजा, उसके पश्चात आज है श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का आविर्भाव। तो श्रीमती विष्णु प्रिया देवी कौन है, महाप्रभु की द्वितीय पत्नी है। तो प्रथम पत्नी कौन थी, श्री लक्ष्मी प्रिया। तो कहते हैं कि विष्णु प्रिया देवी कौन है, तो जैसे भगवान नारायण की दो पत्नियां हैं, एक है श्री देवी और एक है भू देवी, आपने सुना रहेगा। तो भगवान नारायण तो मूल रूप में गौर नारायण के रूप में उपस्थित हुए हैं, हाँ, महाप्रभु के रूप में। तो जो श्री देवी है, और वो किस रूप में आई है, लक्ष्मी देवी के रूप में, और जो भू देवी है वो किस रूप में आई है, हाँ, विष्णु प्रिया के रूप में। तो एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव बताते हैं उनके क्लास में कि लक्ष्मी प्रिया, आप अगर जानते हैं तो उनका अंतर्धान होने के पश्चात महाप्रभु ने विष्णु प्रिया देवी के साथ विवाह किया। तो ऐसा क्यों, लक्ष्मी प्रिया देवी को अंतर्धान होने की क्या जरूरत थी। तो कहते हैं कि लक्ष्मी प्रिया देवी कौन है, तो स्वयं लक्ष्मी या श्री देवी है। तो श्री देवी नारायण को संन्यास लेते हुए नहीं देख सकती, कि नारायण जब संन्यास लेके, हाँ, उनका कैसा ऐश्वर्य भाव है, अरे हमारे नारायण भगवान हमेशा सुखरूप होने चाहिए, हाँ, ये संन्यास वन्यास उनको पसंद नहीं है श्री देवी के, कि मेरे पति कैसे, हाँ, मुझसे अलग हो सकते हैं, तो वो बात उनको सहन नहीं हो सकती। तो इसलिए लीला के हिसाब से उनका अंतर्धान होना जरूरी जरूरी था, क्योंकि लक्ष्मी देवी वो सहन नहीं कर सकती, महाप्रभु ने लिया हुआ संन्यास। तो वो क्या करती है, अंतर्धान होके नित्य आध्यात्मिक जगत में चली जाती है, जहाँ पे वो हमेशा गौरांग महाप्रभु के साथ रहती है। तो जल्दी छुट्टी करा के चली जाती है वो लक्ष्मी प्रिया देवी, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकती ये भगवान ने लिया हुआ संन्यास। तो आप अगर पूछते होंगे तो विष्णुप्रिया देवी सहन कर सकती है क्या, तो कहते हैं कि वो भी सहन नहीं कर सकती, लेकिन विष्णुप्रिया देवी भू देवी होते के कारण, हाँ, भू देवी के बारे में कहा है कि उसका हम सबके प्रति, मतलब जो बद्ध जीव है उनके प्रति खास वात्सल्य प्रेम है, जैसे हमको हमारा शरीर कहाँ से, भूदेवी से मिलता है, तो उस हिसाब से समझ सकते हैं कि उसका बद्ध जीवों के प्रति खास प्रेम है, वात्सल्य है। हाँ, तो वो उसको भी सहन नहीं होगा कि गौरांग महाप्रभु संन्यास लें, लेकिन अपने ये सारे बच्चों को बचाने के लिए, या हम बद्ध गौरांग महाप्रभु संन्यास क्यों ले रहे हैं, सभी बद्ध जीवों को बचाने के लिए, तो उसके लिए विष्णुप्रिया देवी ये सहन करने के लिए तैयार है कि अरे हाँ मेरे पति जी संन्यास ले रहे, लेकिन किस किसके लिए, मेरे बच्चों को बचाने के लिए, तो इसलिए वो परमिशन दे देती है। हाँ मतलब क्या वो सहन कर लेती है, श्री विष्णुप्रिया देवी की जिसकी जिनकी वजह से महाप्रभु ने संन्यास लेना संभव हुआ, जिनकी वजह से उन्होंने फिर बाद में हरि नाम का प्रचार किया। तो ऐसा है श्री विष्णु प्रिया देवी की महानता। तो जब ही संन्यास ले रहे थे गौरांग महाप्रभु, तो विष्णु प्रिया देवी उनके सामने आती है उनको, हाँ उसके पहले, कि कहते कि मैंने हाँ बहुत जनों से सुना है कि आप उस सन्यासी के साथ बहुत संग करते हो। किन सन्यासी के साथ? किन के साथ? हाँ केशव भारती, बराबर। हाँ, और केशव भारती जब आते हैं नवद्वीप में, तो उनके साथ महाप्रभु काफी समय बिताते हैं। तो बोलते आप केशव भारती के साथ बहुत संग करते हो, तो मुझे लगता है कि आप उनको गुरु बना के संन्यास लेने वाले हो। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, ये किसने आपको बताया, ऐसे अफवाहों के ऊपर विश्वास नहीं रखते ऐसा कहते हैं उनको। तो फिर विष्णुप्रिया देवी उनको कहती है कि आपको लगता है क्या कि मैं आपके बंधन का कारण बनूंगी, मैं तो यह सहन नहीं कर सकती कि आपके कोमल चरण, आप संन्यास लेते हैं तो क्या करते हैं कि जमीन पे सो जाते हैं, हाँ ठंड में भी 3 बार स्नान करते हैं, तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, तो उससे अच्छा, ये थोड़ा सा हृदय स्पर्शी है वो जो कहती है विष्णु प्रिया देवी, वो कहती है कि उससे अच्छा मैं ही कुछ विष वगैरह खाकर मर जाती हूँ, तुम घर पे अच्छे से सुखरूप रहो, यही इसी में मेरी खुशी है। तो महाप्रभु उसको अच्छे तरीके से सांत्वना करते हैं कि नहीं 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 ऐसा मत सोचो, कृष्ण ही सबके पति हैं, ऐसा वगैरह सब करके कह के। हाँ, और लेकिन ये सब होने के बाद भी हाँ विष्णुप्रिया देवी यही समझती है कि गौरंगा महाप्रभु मेरे पति हैं, ऐसा करके। तो फाइनली अंत में अंत तो गत्वा महाप्रभु को उनको वचन देना पड़ता है। क्या वचन देना पड़ता है? कि जब भी आप मेरा स्मरण करो, मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो उसके पश्चात ऐसा कहते हैं कि विष्णुप्रिया देवी जो है, वो जो हम माला करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक माला पूर्ण पूर्ण होने के बाद एक तंडुली का, मतलब चावल का एक दाना बाजू में रखती थी, फिर दूसरा माला करती थी, फिर दूसरा बाजू में रखती थी, तीसरा करती थी, ऐसा 192 करने के बाद 192 दाने बाजू में होकर उसको पकाकर महाप्रभु के मूर्ति को अर्पण करती थी, और महाप्रभु उसको स्वयं ग्रहण करते थे, और उसके पश्चात विष्णुप्रिया देवी उसका महाप्रसाद बोल के उसका ग्रहण करती थी। तो ये तो बहुत बड़ी तपस्या है, और ऐसा उन्होंने अंत तक किया, अंतर्धान होने तक। तो ये श्रीमती विष्णुप्रिया देवी की महानता। और भी कहते हैं कि जो नवविधा भक्ति है उसका साक्षात स्वरूप मतलब विष्णुप्रिया देवी है। नवविधा भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इन नवविधा जो भक्ति है उसमें अगर हमको आगे बढ़ना है तो विष्णुप्रिया देवी का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विष्णुप्रिया देवी ही स्वयं मूर्तिमंत रूप है ये नवविधा भक्ति का। तो उसके पश्चात आज श्री पुंडरीक विद्यानिधि, उनका भी क्या है, आविर्भाव दिन है। तो हम देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, हाँ उसके पश्चात भगवान कृष्ण को लगा कि मैं भी वापस श्रीमती राधा रानी का जो भाव है या उसका जो सुख है उसको मैं खुद अनुभव करना चाहता हूँ, तो महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं। तो कृष्ण के जो सारे पार्षद हैं वो भी उनके तरह ही सोचते हैं कि यार हम भी हाँ अलग अलग प्रकार से भगवान की, गौरांग महाप्रभु के अवतार में भी हम सेवा करेंगे। तो जो पुंडरीक विद्यानिधि, जो वृषभानु महाराज हैं, जो राधा रानी के पिता हैं, वो गौर लीला में कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि है। तो आध्यात्मिक जगत एकदम विचित्र जगत है। उसमें ऐसा आप देखेंगे कि कोई, हम सोचते हैं कि भौतिक जगत में ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए, तो वैसे नियम आध्यात्मिक जगत में लागू नहीं है। तो पुंडरीक विद्यानिधि आप देखेंगे तो कैसे रहते थे, एकदम अय्याश की तरह रहते थे। मतलब हाँ, अच्छे से सुगंधित तेल लगाते थे, हाँ अपने आईने के सामने खुद को देखते थे कि कैसा दिख रहा हूँ मैं। और अच्छे से एकदम सुगंधित पान चबाते थे। तो ऐसा देख के कोई लगेगा ये तो कोई एकदम हाँ विषयी व्यक्ति है। तो ये देखकर गदाधर पंडित, जो पूरे वैरागी है, वो सोचते हैं अरे ये क्या वैष्णव है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम बाहरी रूप से प्रभावित होकर सोचते हैं कि अरे ये कैसे वैष्णव हो सकता है, ये तो ये करता है, ये तो वो करते हैं ऐसा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ कि बहुत महान श्रेणी के वो वैष्णव हो सकते हैं और हमारा अपराध हो जाए, तो उससे बचाने के लिए, तो ये गदाधर पंडित ये की ये लीला है। गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो ये मुकुंद उन एक भागवतम का श्लोक गाते हैं कि बताने के लिए कि ये जो दिख रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है, पुंडरीक विद्यानिधि। तो उनके सामने एक श्लोक गाते हैं, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांस या अपायदपि असाध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो कहते हैं कि ऐसा कौन दयालु है जो पूतना जैसी राक्षसी को भी अपने धात्री की तरह, जिन्होंने अपनी माता की तरह स्थान दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूध पिलाने की चेष्टा की उनको। वैसे तो विष पिलाने के लिए आई थी, लेकिन दूध पिलाने की चेष्टा की ऐसा भाव रखकर। तो वही देखकर भगवान ने क्या किया, उनको अपने माता का स्थान दिया। ये जैसे सुना पुंडरीक विद्यानिधि ने, हाँ सारे अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में आ गए। अपने हाथ से जैसे पागल व्यक्ति होते, अपने सारे कपड़े फाड़ दिए, जमीन पर लोटपोट हो गए, कृष्ण 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 कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ शरीर शरीर में कंपन होने लगा, पूरे शरीर पर रोमांच खड़े हो गए। हाँ तो ये देखकर गदाधर पंडित बोले, अरे ये तो बड़े हाँ उच्च श्रेणी के भक्त लगते हैं, मेरा उनसे अपराध हो गया। हाँ तो बाद में क्या करते, पुंडरीक विद्यानिधि से वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं ये बहुत सही है, क्योंकि हाँ ये तो जैसे एक कन्या के लिए उसके पिता क्या है, गुरु के समान है। तो वैसे ही हाँ, राधा रानी दीक्षा ले वृषभानु महाराज से, ये तो यथोचित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि, और एक उनका एक विशेष लीला है कि जब वो जगन्नाथ जी को देखते हैं, देखते हैं कि जगन्नाथ और बलदेव जी को वो ऐसा कपास का वस्त्र पहना है, और कपास का वस्त्र जो होता है वो पहले आपको अच्छे से धोना होता है, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टार्च, स्टार्च को क्या बोलते हैं, कंजी, कंजी लगी हुई होती है। तो अच्छे से पानी में भिगो के उसको अच्छे से निचोड़ के फिर पहनना होता है। तो देखते हैं कि अरे ये तो उन्होंने ऐसे ही पहना दिया भगवान को। तो मन में सोचते, कुछ बोलते भी नहीं है कि अरे ऐसा कैसा पहना दिया उन्होंने। तो रात को क्या होता है कि जगन्नाथ और बलदेव जी आकर हाँ उनको हाँ दे दनादन दो चार एक ऐसे हाँ झापड़ मार मार के उनका गाल सुजा देते हैं। तो वो सुबह सूजा गाल देखकर हाँ पुंडरीक विद्यानिधि को बहुत आनंद होता है, कह रहे भगवान से मुझे पड़ी थोड़ी। तो हमको भी आनंद होना चाहिए, हमको जब भी अगर भगवान से पड़े। तो कह रहे वाह, हाँ एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं भगवान हमारे साथ। तो आप, हम अगर सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे इस कि अरे ये तो वृषभानु महाराज हैं, उनको कृष्ण बलराम ने ऐसे कैसे हाँ ऐसे कैसे मारा। तो इसमें ऐसा सोचना चाहिए कि अभी वो पुंडरीक विद्यानिधि के रोल में है, ये गौर लीला और कृष्ण लीला को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो वो गौर लीला के पुंडरीक विद्यानिधि है। हाँ अगर देखना ही है कि कैसे उनके साथ आचार होता है, तो देखना चाहिए कि गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कैसे उनके साथ आचार है। तो वो देख के हम, वो आदर का आचार है। हाँ, क्योंकि हाँ, गौरांग महाप्रभु कभी कभी उनको बाप करके बुलाते थे, मुंडेर। हाँ, तो बाप मतलब मेरे पिता। तो ऐसा कृष्ण लीला और बलराम जी के लीला, उनके लिए वो एक भक्त है, वृषभानु महाराज नहीं है। तो ये सोचना चाहिए हमको। तो उसके पश्चात आज रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव दिन है। तो रघुनंदन ठाकुर को मुकुंद सरकार और नरहरी सरकार करके दो भाई हैं, और उनका बेटा है रघुनंदन सरकार, जिनके आप वैष्णव कैलेंडर में देखेंगे तो रघुनंदन ठाकुर लिखा है, लेकिन वो रघुनंदन सरकार है। तो उन्हीं को रघुनंदन ठाकुर बोल रहे हैं। तो महाप्रभु तीनों को अलग अलग सेवाएं देते हैं। तो हमको जानना चाहिए कि भक्ति में कैसे विविधता है। कभी कभी हम किसी के साथ सेवा करते हैं, हम बोलते हैं अरे ये तो इतना फास्ट है, हाँ इतना कितना पैशन है इसमें, हाँ फटाफट मेरे धीरे धीरे काम क्यों नहीं करता। या फिर कोई किसी को स्लो काम कर रहा है, हाँ उसको बोलते हैं अरे क्या तमोगुण में है, मेरी तरह फास्ट काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ ऐसा हम सोचते, विविधता है। तो ये हम देखते हैं कि महाप्रभु रघुनंदन सरकार को क्या सलाह देते हैं कि आप केवल भगवान की विग्रहों की सेवा करो। मुकुंद सरकार को कहते हैं कि आप मेरे साथ रहो, और नरहरी सरकार को कहते हैं कि आप कुटुंब का पालन करो, पैसे कमा कर। तो इस प्रकार से उल्टा, सॉरी, मुकुंद सरकार को कहते हैं कि आप राज सेवा जो है वो चलती रहे, और नरहरी सरकार को कहते हैं आप मेरे साथ आ जाओ। तो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, उनका अलग अलग प्रकार का स्वभाव है, जिससे वो अलग अलग प्रकार से सेवा में नियुक्त तो हो सकते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो मुकुंद सरकार को पूछते हैं कि रघुनाथ तुम्हारे पिता हैं, तुम रघुनाथ का पिता हो या रघुनाथ तुम्हारे पिता हैं? तो मुकुंद सरकार कहते हैं कि रघुनाथ मेरे पिता हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है उसको गुरु या पिता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हाँ, रघुनाथ हमारे हमसे पहले भक्ति में आया, इसलिए रघुनाथ ही मेरा पिता है करके रघुनंदन ही मेरा पिता है, सॉरी, ऐसा करके कहते हैं। तो महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर। फिर उसके पश्चात उनके बचपन की एक कथा बताते हैं कि जैसे मुकुंद सरकार जो है वो हमेशा भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण कर कर जो राजभोग सेवा है वो स्वयं अर्पण करते थे, स्वयं पुजारी थे। तो एक दिन कहीं उनको बाहर जाना हुआ, तो उन्होंने रघुनंदन को कहा कि बेटा ये भगवान को खिलाना। तो रघुनंदन ने कहा ठीक है, कैसे खिलाते हैं? उन्होंने बताया ऐसे 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 करो, ये मंत्र बोलो और खिलाओ। तो कहा ठीक है। तो फिर भगवान के, हाँ कौन से, गोपाल जी थे उनके सामने, गोपाल जी, गोपीनाथ, गोपीनाथ, हाँ ये भी गोपीनाथ ही है, खीर चोर वाले जैसे, इनके सामने क्या लड्डू रखा था। हाँ तो ये गोपीनाथ जी के सामने अलग अलग भोग रखते हैं, और भगवान को बोलते हैं हाँ चलो भगवान खा जाओ। तो भगवान तो ऐसे ही खड़े हैं, तो देखकर रोना चालू करते हैं। तो भगवान बोलते हैं अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बोले अरे तुम कुछ खा नहीं रहे हो, मेरे पिताजी ने कहा सब खिलाओ, अगर तुम खाओगे नहीं तो पिताजी मारेंगे मुझे कि खिलाया क्यों नहीं भगवान को। तो बोले कि अरे मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, क्या बोलते, सकल इंद्रिय वृत्ति मंती अंगानी ऐसे सकल इंद्रिय वृत्ति मंती, हाँ भगवान आँख से खा सकते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, कान से आस्वादन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भगवान, केवल हम बोलते हैं कि इदम नैवेद्यम, तो वो सुन के ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, कह रहे हाँ आँख से भी भगवान ग्रहण कर सकते हैं। हाँ तो लेकिन रघुनंदन कहते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, आँख से कोई थोड़ी खाता है, हाँ पूरा ये खत्म करो फिर समझ में आएगा कि खा लिया आपने करके। तो वृंदावन में आप देखते हैं कि, हाँ वैकुंठ में आप देखते हैं कि हाँ भगवान विविध प्रकार की ऐश्वर्य लीला करते हैं। हाँ वृंदावन में भगवान चाहे आंखों से सुन सकते हैं, और विविध प्रकार की चीजें कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन में देखते हैं हम कि भगवान आंखों से ही देखते हैं और कान से देख नहीं सकते। जब गोप उनके आंखें ऐसे पीछे से पकड़ लेते हैं, हाँ मूंद लेते हैं और कहते हैं कौन है पहचान, हाँ तो भगवान सच में नहीं पहचान सकते। ऐसे नहीं वो कह सकते अरे मैं तो पीठ से भी देख सकता हूँ ऐसा नहीं कहते, हाँ क्योंकि सच में वो भक्तों के प्रेम से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि एकदम सामान्य नर के भांति मनुष्य के भांति वो आंख से ही देख पाते हैं वृंदावन में, और कान से ही सुन सकते हैं। हाँ भगवान के कान किसी ने बंद कर लिए तो भगवान नहीं सुन सकते वृंदावन में तो इस प्रकार से तो भगवान पूरा वो भोगा खा जाते हैं। तो फिर जो रघुनंदन की माता है वो आके पूछती है अरे क्या हुआ, हाँ ये क्या भोगा सब किधर चला गया तो बोले अरे भगवान ने खा लिया। तो अरे ऐसा थोड़ी होता है भगवान ने खा लिया, हाँ तुमने कुछ किया रहेगा तो उसके पश्चात जब मुकुंद सरकार वापस आते हैं तो कहते हैं कि अजी सुनते हो क्या हो गया आज, हाँ इसने अर्पण किया और गायब भी हो गया भोगा। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, तो रघुनंदन कहते हैं ऐसा क्या आपने तो बताया कि खिलाओ करके तो खा लिया भगवान ने। तो मुकुंद सरकार को थोड़ा संशय उत्पन्न हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर से भोग लगाओ तो वापस जब वो भोग लगाते हैं और पीछे से छुपके से हाँ मुकुंद सरकार देख रहे हैं, तो कहते हैं कि ऐसा आधा लाडू खाते हैं उसके लिए हाथ उठाते हैं गोपीनाथ, और जैसे ही मुकुंद सरकार को देखते हैं तो रुक जाते हैं। तो आज भी शायद से उनको वो लड्डू खिलाते हैं मेरे घर से, हाँ अभी भी वो लड्डू भी है कह रहे हो तो 500 साल बाद। तो ये है रघुनंदन ठाकुर के बारे में थोड़ा सा। अभी आज रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी आविर्भाव दिन है तो उनके बारे में तो पूरा चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे अध्याय हैं तो उनकी चर्चा करेंगे जाएंगे तो 3-4 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो संक्षेप में बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने जो गौरांग महाप्रभु के बारे में 3-3 घंटा रोज क्या करते थे, राधा कुंड के तट पर गौर कथा करते थे, और वो गौर कथा सुन सुन कर क्या हुआ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चरितामृत लिखा है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी है, और इतने विरक्त थे कि खुद के लिए कुछ कुटीर नहीं बनाया था उन्होंने। तो एक बार आपने उधर पिक्चर देखा होगा फोटो की जिसमें धूप में बैठे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे हैं और पूर्ण तरह भाव विभोर हैं, और श्रीमती राधा रानी सोचती है कि अरे मेरा भक्त इतनी धूप में गर्मी हो रही है उसको पसीना बह रहा है, तो स्वयं अपने पल्लू से उनको छाया दे देती है श्रीमती राधा रानी। तो ये देखकर सनातन गोस्वामी बाद में पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि अरे रघुनाथ दास कि हमारा काम है राधा कृष्ण की सेवा करना, ऐसा नहीं कि उनकी सेवा लेना, तो तुम अच्छा है कि तुम्हें भी कुटीर बना लो एक अपने लिए, ऐसा करते हैं। और बाद में पश्चात देखते हैं कि और एक ऐसी लीला होती है कि राधा कुंड के तट पर जप कर रहे हैं, अभी भी कुटीर नहीं बनाया उन्होंने, तो एक शेर आ जाता है उधर पानी पीने के लिए, तो उससे बचाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं एक लाठी लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी और वो शेर के बीच में खड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अरे हाँ अभी तो हाँ स्वयं भगवान कृष्ण भी तुम्हारी सेवा करने के लिए आ गए, अभी तुम क्या करो सच में अपना कुटीर बना लो। तो उसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, तो कुटीर बना लेते हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कुटीर आप अगर राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में देख सकते हैं। तो और एक उनकी कथा है कि कैसे वो कृष्ण लीला में हमेशा मग्न रहते थे, तो कहते हैं कि वो केवल उनका खाना क्या रहता था कि 3 3 ड्रॉप बटर मिल्क बोलते हैं, 3 छाँस के बूंद हम बोल सकते हैं कि एक द्रोण भर के छाँस उतना ही पूरा दिन में, अब 2 दिन में एक बार खाते थे वो पीते थे। तो एक बार उनके शिष्य ने सोचा कि इतना सा पूरा 2 दिन में मुझे सहन नहीं हो रहा है कि मेरे गुरु इतना सा ही खा रहे हैं करके, तो एक बड़ा पत्तल चाहिए मुझे करके, तो बड़े पत्तल का द्रोण बना के लेकर आते हैं, और क्योंकि उसमें ज़्यादा छाँस बैठेगा तो छाँस ऐसा पूरा उसमें भर के रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने रखते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पूछते हैं, पीने जाते हैं, और उसके पहले पूछते हैं उनके शिष्यों को कि अरे कहाँ से आया भाई ये इतना बड़ा द्रोण? तो बोलते हैं सखी स्थली से आया। तो रघुनाथ दास बोलते हैं सखी स्थली, ऐसा बोल के पूरा पूरा वो पूरा का पूरा छाछ के साथ दूर फेंक देते हैं। बोलते कल से मेरे लिए छाछ मत लाना। तो क्या ये भी आध्यात्मिक स्तर का एक 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 क्या कहते हैं, लॉयल्टी को क्या कहते हैं, राधा रानी के प्रति जो उनका विशेष भाव है। तो हाँ, क्योंकि सखीस्थली है जहाँ पे श्री चंद्रावली का स्थान है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे चंद्रावली का द्वेष करते हैं राधा रानी के जो अनुयायी है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे, बहुत जगह पे आप देखेंगे कि हमारे गोस्वामियों ने चंद्रावली को भी दंडवत किया है, उनको भी प्रणाम किया है। लेकिन क्या है कि एक लीला के तौर पर या फिर एक ऐसा भाव है उस स्तर पर उनका कि हाँ, वो राधा रानी की क्या है, हाँ, प्रतिस्पर्धी है चंद्रावली, इसलिए वो वहां से आया हुआ छास को भी स्पर्श नहीं करना चाहते या द्रोण को भी स्पर्श नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार का भाव है रघुनाथ दास गोस्वामी का। और श्री गिरिराज जी का जो शीला, उनका वैराग्य देखकर और उनका भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हुए उनके साथ कि उन्होंने खुद जो वो शीला पहनते थे और उनको आंखों को लगाते थे, सर पर लगाते थे, उसका घ्राण से हाँ सुगंध लेते थे, वो शीला उनके ऊपर, कभी कभी उनके भाव की वजह से वो शीला क्या हो गई थी, पिघल गई थी, और उनके महाप्रभु के अंगूठे के निशान उस पर आ गए थे। वो निशान, वो शीला उन्होंने क्या की, समर्पित की रघुनाथ दास गोस्वामी को। और रघुनाथ दास गोस्वामी के बाद परंपरागत आकर बाद में कृष्णप्रिया ठाकुरानी, उसके बाद ऐसे आकर के फाइनली अंततोगत्वा विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर पाद के पास वो शीला आ गई, जिनका आज तिरुभाव दिन दिन है। तो थोड़ा सा हम विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर के बारे में सुनकर आज की कथा को विराम देंगे। कुछ मिस नहीं किया ना मैंने? वसंत पंचमी के बारे में थोड़ा सा हमने सुना, सरस्वती पूजा, पुंडरीक विद्यानिधि, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, रघुनंदन ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, और अभी श्री विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर के बारे में थोड़ा सा हम सुनेंगे। तो विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर ये हैं बहुत ही अपने संप्रदाय के बड़े रसिक आचार्य हैं। और जब यह 17वें 18वें शतक में जो गौड़ीय वैष्णवता जो थी वो क्या हुई थी, महाप्रभु जाने के बाद उसमें बहुत सारे अपसंप्रदाय, बहुत सारे अपसिद्धांत आ गए थे, तो ये शुद्ध गौड़ीय सिद्धांत को सुरक्षित रखने का काम विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर पाद ने किया। तो इसलिए हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे कि ये बड़ा जो कार्य है। तो कहते हैं कि इनका जन्म किधर हुआ, विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर का नादिया जिले में राढ़ीय श्रेणी विप्रकुल में उनका जन्म हुआ। उनका बचपन से नाम था हरिवल्लभ, हरिवल्लभ उनका नाम था, बाद में हम देखेंगे उनका विश्वनाथ चक्रवर्ती नाम कैसे पड़ा। तो देवग्राम नामक गांव में उन्होंने व्याकरण सीखा, और उसके पास बाद उन्होंने गृह त्याग करके वृंदावन चले गए, और उधर उन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचनाएं और टीकाएं लिखी वृंदावन में। तो नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य थे जिनका नाम था श्री गंगानारायण चक्रवर्ती, जो इधर विद्यमान है। तो गंगानारायण चक्रवर्ती पाद के कोई पुत्र नहीं थे, उनकी केवल एक कन्या थी जिनका नाम भी विष्णुप्रिया था। और नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य थे जिनका नाम था रामकृष्ण भट्टाचार्य, और उनका पुत्र का नाम था कृष्णचरण। तो ये कृष्णचरण को गंगानारायण चक्रवर्ती ने गोद लिया था, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था इसलिए। तो ये जो कृष्णचरण है उनके शिष्य हुए राधा रमन चक्रवर्ती। तो राधा रमन चक्रवर्ती ये विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर के गुरु हो गए। तो ये पूरा परंपरा है ऐसा। तो एक ही श्लोक में इन सबको चक्रवर्ती पाद प्रणाम करते हैं। श्री रामकृष्ण गंगाचरणा नत्वा गुरुन उरु प्रेम्णः श्रील नरोत्तम नाथ श्री गौरांग प्रभु नौमी। तो राम शब्द से श्री राधारमण गोस्वामी को द्योतित किया, कृष्ण शब्द से कृष्णचरण गोस्वामी, हाँ, गंगा चरणाम, गंगा शब्द से गंगानारायण चक्रवर्ती, हाँ, उसके बाद नरोत्तम नाथ, नाथ नरोत्तम मतलब नरोत्तम दास ठाकुर, नाथ मतलब लोकनाथ गोस्वामी। तो सबको एक ही श्लोक में उन्होंने व्याप लिया सबको प्रणाम किया। तो अनेक अपसंप्रदाय जो रूप कविराज जैसे अपसंप्रदायी थे उन, 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 उनका लोकनाथ गोस्वामी, हाँ पीछे हाँ लोकनाथ गोस्वामी भी उनको भी प्रणाम कर रहे हैं चक्रवर्तीवाद। तो पूरा ऐसा परंपरा है। सो आज यहाँ पे देख रहे हैं तो लोकनाथ गोस्वामी, उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं रामकृष्ण भट्टाचार्य, उनके कनिष्ठ पुत्र हैं कृष्णचरण, कृष्णचरण के शिष्य हैं राधा रमन चक्रवर्ती, और उनके शिष्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो चारों परंपरा में मौजूद है इधर तो ऐसे रूप कविराज और अनेक प्रकार के जो ये हुए जिन्होंने अपसिद्धांत फैलाने की कोशिश की, जो अतिबाड़ी अपसंप्रदाय से थे, उनके विरुद्ध उन्होंने जो अपसिद्धांत उठाए उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने खंडन किया। और उसके पश्चात एक बार उनके मन में एक ऐसे शंका आई कि जो काम गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र तो उसमें कह रहे हैं कि 24.5 चंद्र हैं कृष्ण के शरीर पे, 24.5 चंद्र हैं मतलब उनका दो गाल जो है दो चंद्र के समान है, उनके नाखून जो है चंद्र के समान है, ऐसे 24.5 चंद्र के बारे में बताया है। तो उनके समझ में नहीं आता, उनको 24 ही समझ में आ रहे थे, तो ये आधा चंद चंद्र किधर है, उसकी उनको चिंता लग गई। तो पूरे रात भर नहीं सोए, बहुत रातें नहीं सोए वो। ऐसा हमारे साथ कभी हुआ कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हमारे हम सोच रहे हैं कि अरे ये ऐसा कैसे। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो भगवान स्वयं आकर हाँ साक्षात कर देते कि इसका अर्थ ये है। जैसे अद्वैताचार्य को एक बार उनके दिमाग में आया था कि अरे ये जो श्लोक है सर्वथा पाणि पादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम, ये भक्ति का द्योतक कैसे है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो पूरी रात रात भर जग रहे थे। फिर अंत में एक रात को जगते जगते जब उनकी आधी नींद लग गई, तो गौरांग महाप्रभु या कृष्ण दोनों में से एक आकर उनको बताते हैं कि भैया ये उसका तात्पर्य है, ये उसका स्पष्टीकरण है, सपने में उनको बताते तो ऐसी जब जिस जिसकी लौल्य या फिर जिसकी खास तीव्र इच्छा होगी, तो ऐसे देखते हैं कि चक्रवर्ती पाद के सपने में स्वयं राधा रानी आती है और बताती हैं कि कौन से श्लोक में क्या मतलब, गायत्री के मंत्र में कौन से श्लोक का क्या, कौन सा चंद्र किधर है ये उनको समझाती है। और कहती है कि ये गायत्री मंत्र से राधा रानी और कृष्ण दोनों की उपासना होती है, ऐसा करके उनको समझाते हैं। उसके पश्चात एक विशेष उनका एक लीला हुआ जो हम सुनेंगे अभी, कि एक बार कि ये जो जो अपसिद्धांत वाले लोग थे, तो उन्होंने एक बार उन्होंने ऐसा कारस्थान किया, कॉन्स्पिरसी को क्या कहते हैं कारस्थान किया कि हम हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उनको उनकी हत्या करेंगे, ऐसा करके सोचा। तो वो सब आ गए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कुटीर के इधर। तो ये विरोधी जो व्यक्ति थे वो देख रहे थे कि वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के परिक्रमा करते करते कुंज के समीप पहुंचने पर विरोधियों ने चक्रवर्ती पाद ठाकुर को मारना चाहा, किंतु अकस्मात देखा कि वे वहां अचानक से वहां से अंतर्धान हो गए। और वहां पे कौन किसको उन्होंने देखा, अभी तो उनके स्थान पर एक सुंदर व्रज बालिका अपनी दो तीन सहेलियों के साथ पुष्प चयन कर रही थी, वो उन्होंने देखा। तो पंडितों ने उनको पूछा कि लाली अभी अभी एक महात्मा इधर आए थे, वो किधर गए, क्या तुमने उनको देखा। तो बालिका ने उत्तर दिया, देखा तो था परंतु किस ओर गए मुझे मालूम नहीं तो बालिका स्वयं कृष्ण लीला स्वरूप है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, जो विनोद वल्लरी मंजरी है। तो बालिका के अद्भुत रूप सौंदर्य और मंद मुस्कान को देखकर सभी पंडित समाज मुग्ध हो गए, उनके मन के सारा कल्मश दूर हो गया, जो इरादे से आए थे दुष्ट इरादे से वो सब उनका वो बालिका को देखकर दूर दूर हो गया, उनका हृदय द्रवित हो गया। तो ऐसे देखते हैं साधु कर देख के असाधु भी, उनका भी हृदय द्रवित हो जाते हैं, धीरा धीर जनप्रिय हो कहते हैं। तो पंडित को ये धारा पूछने जाने पर बालिका ने कहा, मैं तो राधा रानी की सहचरी हूं, वे मुझे पुष्प चयन करने के लिए इधर भेजा है, तो वे अभी वयावट में है, मुझे पुष्प चयन करने के लिए भेजा है। ऐसा कहते कहते वो बालिका भी अंतर्धान हो गई और उनके जगह पे वापस उन्होंने विश्वनाथ चौधरी ठाकुर पाद को देखा। चले विश्वनाथ चौधरी ठाकुर पाद की। तो सभी पंडितों ने उनके चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा की याचना की कि हम ये दुष्ट हेतु से आपके पास आए थे, अभी आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो बड़े उदार हृदय से चक्रतिपाद ने उन्होंने क्षमा कर दी। वैष्णव तो किसी का कोई अपराध नहीं लेते। तो अभी हम मैं आपको बताया था कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर का मतलब क्या है, हम देखेंगे। तो कहते हैं इनके वैष्णव के हिसाब से विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्यों उनको कहा गया है, विश्वस्य नाथ रूपोसो भक्तिवर्त्म प्रदर्शनात्, क्योंकि भक्तिवर्त्म का भक्ति मार्ग का प्रदर्शन विश्वनाथ चक्र ठाकुर करते हैं, इसलिए विश्व के नाथ है वो, क्योंकि वो सही रास्ता दिखा रहे हैं सबको, इसलिए विश्वनाथ है। भक्ति चक्रे वर्ती तत्व चक्रवर्ती आख्याया भवत, और शुद्ध भक्ति का प्रचार करने की वजह से चक्रवर्ती हो गए। ऐसे राजा होता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं, हाँ वो सबके ऊपर उसका नियंत्रण रहता है, तो वैसे भक्ति का राज सबके ऊपर है, कर्म ज्ञान योग तप उसके सबके ऊपर भक्ति है, और उसका प्रचार उन्होंने किया इसलिए चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसलिए उनका विश्वनाथ चक्रवर्ती पड़ा। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का खुद का क्या मत है, उनका नाम विश्वनाथ क्यों है, तो बोलते हैं कि विशेष श्व बोलते हैं, कि वो बोलते हैं कि विशेष श्व नाथा, नाथति इति विश्वनाथा, बोलते हैं कि मैं एक विशेष मतलब स्पेशल, विशेष श्व मतलब कुत्ता, मैं एक विशेष कुत्ता हूं जिसका नाथ है, कोई तो नाथ है मतलब भगवान कृष्ण या वैष्णव उसके नाथ है, इसलिए मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं विशेष कुत्ता हूं जिसके जिसका कोई नाथ है, तो इसलिए पूरे नम्रता के साथ विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपने नाम का ऐसा स्पष्टीकरण करते हैं। तो ये वैष्णव नम्रता है, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर भी कहते हैं आमित तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुकुर, मतलब वो कहते हैं कि एक एक श्वान या कुत्ते के समान होता है, कुत्ता के प्रामाणिक होता है अपने मालिक के प्रति। वैसे तो एक एक स्रोत के हिसाब से ऐसा भी कहा गया है कि माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ जगत कैलधन्य, इधर 23 ग्रंथों की लिस्ट है उनके जो मैं नहीं पढ़ूंगा अभी। जो जो चक्रधिपाद ने कुछ कुछ प्रजरीति चिंतामणि चमत्कार चंद्रिका गीतावली इत्यादि इत्यादि, तो ऐसी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है उन्होंने। तो उनके बारे में कह रहे हैं कि चक्रवर्ती मुखे वक्ता आपनी कृष्ण चैतन्य, तो चक्रवर्ती पाद खुद लिख रहे हैं, वो चक्रवर्ती पाद नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु खुद उनके लेखनी से लिख रहे हैं। तो केह कहे न चक्रवर्ती शुरू रूपे रा अवतार, कोई कहता है कि चक्रवर्ती पाद स्वयं रूप गोस्वामी के अवतार है, वापस आए हुए हैं रूप गोस्वामी भक्ति का ये सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी ने तो कठिन कठिन इसमें लिखा था, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर, रूप गोस्वामी स्वयं विश्वनाथ चक्र ठाकुर के रूप में आते हैं, ऐसा करके एक प्रवाद है। ओहे गुण नदी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की जानी व तोमार गुण मुई मूढ़मती, तो बोलते मैं तो आपका प्रशंसा करने के लायक भी नहीं हूँ, मैं तो मूढ़मती हूँ, मैं क्या आपका गुणगान करूंगा, लेकिन आप कृपा करके गुण निधि, आप तो गुण निधि हैं, तो आप हम पर कृपा करें। तो यही प्रार्थना हम श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर श्री जी से कर सकते हैं, कि जो इन्होंने पूरा पूरे समय शुद्ध भक्ति के ऊपर उन्होंने क्या किया, जोर दिया। तो और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने हाँ कहते हैं कि रूप रघुनाथ पदे यारास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, रूप रघुनाथ पदे हैबे आकुति कबे हम बुझबो से जुगल पीरीति। सो राधा कृष्ण को हम हाँ डायरेक्टली नहीं सामने जा सकते, रूप रघुनाथ गोस्वामी के आशीर्वाद से ही हम आगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज अनेक महान महान वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव दिन है, तो हम सच्चे हृदय से उनकी पूजा
प्रार्थना करने का प्रयास करेंगे कि हमारे भक्ति मार्ग पर उन उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हों। जय श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की जय। श्री सरस्वती पूजा की जय। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी की जय। श्री पुंडरीक विद्यानिधि पाद की जय। श्री विश्वनाथ शंकर ठाकुर पाद की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। श्री रघुनंदन ठाकुर पाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण। माधव गोपाल प्रभु की जय। सो अभी माधव गोपाल प्रभु जी अनिलो प्रेमानंद गाएंगे, उसके बाद पुष्पांजलि, और उसके बाद सब लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के दर्शन करके किचन के पीछे प्रसाद ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा।
थोड़ा कीर्तन कर दो, मैं हारमोन लेके आता
हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री हरि नाम संकीर्तन की।
करुणा प्रचो जय अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचो हे नो प्रभु कोता आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनाता कहाँ दास रघुनाथ पतित पवन कहाँ दास रघुनाथ पतित पवन कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कवीरा काले को थागेला गौर नटरा
काले को थागेला
एका काले को थागेला गौर नटरा पाषणे कुटीबो माथा अनले पशिबो
पाषणे कुटीबो माथा अनले पशिबो
गौरांग गुणे रानिधे कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कलो विलास से संग न पाइया कांदे नरोतम दास
से संग न पाइया कांदे नरोतम दास
से संग न पाइया कांदे नरोतम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम राम हरे हरे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर
जय वैष्णव ठाकुर
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री वैष्णव ठाकुर की जय हिताय गौर प्रवर्तन हरि हरि श्री विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर पाद की जय